نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير حسن المسلم اس میں سے ہم صبح و شام کی دعائیں کر رہے تھے آج کنٹینیو کریں گے ڈے ایٹ ہے اور دعاؤں میں سے ہم نے جو صبح اور شام کی دعائیں کی تھی انشاءاللہ تعالی ہم اب اس سے آگے چلیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی موتی نکلے وہ کیسے خوبصورت دعاؤں کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں اور ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لا کر اپنے لیے بہت ہی زیادہ خیر کے معاملے اور خیر کے فیصلے کر سکتے ہیں. جب بھی کوئی چیز آپ کی زندگی میں آئے جس کو آپ پہلی دفعہ کرنے لگیں تو کہا کریں کہ اللہ مجھے نصیب کرنا, مجھے اس میں برکت دینا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح شام کی دعاؤں میں بار بار برکت کی دعائیں ہیں اور خیر کی دعائیں ہیں, تو آج اس میں سے ہم اب کریں گے اگلی دعا. دعا نمبر 22 ہے, صبح و شام پڑھیے. کیا پڑھیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے, اور یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے. جو بھی کہیں سنیں وہ ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. دعا کیا کریں اپنے لیے کہ اللہ قال اللہ اور قال الرسول کے سوا ہمیں اور کچھ دین کے نام پہ کہنے والا نہ بنانا, کیونکہ جب ہم دین کے نام پر اللہ اور رسول کے بعد کسی اور کی بھی کوئی بات کہنے لگتے ہیں تو وہیں سے تو پھر بگاڑ شروع ہوتا ہے, اور ہر ایک پھر ایسی ایسی بات کہہ دے گا جو ہو سکتا ہے کسی دوسرے کو پسند نہ ہو. تو دعا کے الفاظ بہت ہی پیارے ہیں. ابھی تک جتنی بھی دعائیں پڑھی ہیں ان میں سے یہ بھی ایک خوبصورت دعا ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرت. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. اللہم استر عوراتی و آمر روعاتی. اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی وَإِنْ يَمِينِي وَإِنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي. اے اللہ, بے شک میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ, بے شک میں تجھ سے اپنے دین, اپنی دنیا اور اپنے اہل و مال میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ, میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے. اس کو تو بہت ہی تڑپ کے مانگا کریں, کیونکہ اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے تو پھر اس کے بعد کسی کو ہمارا کوئی عیب نہیں دکھے گا, اور اگر اللہ ہمیں رسوا کرنا چاہے تو کوئی بھی ہمیں اس رسوائی سے بچا نہیں سکتا, اور اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچائے. اور میری گھبراہٹوں میں امن دے. اے اللہ, تو میری حفاظت فرما, میرے سامنے سے, میرے پیچھے سے, میری دائیں طرف سے, میری بائیں طرف سے اور میرے اوپر سے. اور میں تیری عظمت کے ساتھ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ ناگہاں یعنی اچانک سڈن اپنے نیچے سے ہلاک کیا جاؤں. سنن ابی داؤد کی روایت ہے 5074 اور ابن ماجہ میں 3871. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور احادیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا عافیت کا طلب کرنا ہے. آئیے تھوڑا سا اس لفظ عافیت کو سمجھیں, کیونکہ بہت سارے لوگ عافیت کے لفظ کو سمجھتے نہیں ہیں, کیونکہ ہم تو چیزوں کو مادی چیزوں میں دیکھتے ہیں نا, مال, اولاد, شکل, صورت, یہ چیزیں. ان سب سے اوپر کی چیز عافیت ہے. مثلا مال مانگا, عافیت نہیں ملی تو مال وبال بن جائے گا, چوری ہو جائے گا, مال کی وجہ سے بگاڑ آئے گا, ہاتھ سے دین شروع ہو جائیں گے, حسد کرنا اور سو آن. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے, اولاد مانگی, بگڑ گئی, صحیح تربیت نہیں کر سکے ہم ان کی, تو وہ عافیت کے بغیر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گی. بالکل اسی طرح سے آپ یاد رکھیے کہ ہر نعمت کے ساتھ عافیت ہے. کیسے؟ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. آپ دیکھیے کہ بجلی, اب بجلی نہ ہو تو آپ اور میں بہت سارے کام نہ کر سکے نا, لیکن بجلی ہو اور اسی میں کرنٹ آ جائے تو ہماری جان لے لے گی نا, بس اسی سے سمجھیے. عافیت کیا ہے؟ کہ ہر نعمت جو تو نے مجھے دی, بجلی ہے, کھانا ہے, پانی ہے, گھر ہے, گاڑی ہے, بچے ہیں, جب تو دے نا تو ساتھ ہی پھر اس کی عافیت بھی دے دے. اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ یہ بچے دے تو ساتھ ہی ساتھ پھر مجھے ان کے غموں سے بے نیاز رکھنا, وہ میرے غموں کا ذریعہ نہ بنے. پھر फिर इसी तरह से आप औलाद को, माल को, घर को रख के जहन में, तो जिस जिस चीज़ के लिए ये दुआ करेंगे ना, तो अल्लाह ताला की रहमत से आपके लिए आसानियाँ होंगी। फिर आप देखिए कि फ़ी दीनी व दुनिया व आखली व माली, चार चीज़ों की आफियत है। अमूमन हम इन चार के बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं। इंसान को अपना दीन बहुत प्यारा होता है जब दीन से ताल्लुक़ जुड़ जाए। आपका मेरा हर वक्त गम और हम क्या होना चाहिए कि अल्लाह मेरे दीन की इस्लाह करना, अल्लाह मेरा दीन पहले से अच्छा हो जाए। बस दीन का बिगाड़ क्या है कि मेरे अकायद ना बिगड़ जाए, मेरी सोच ना भटक जाए। क्यों कहा कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। क्योंकि बड़े बड़े बिगड़े हुए लोग जो आज आपको कहीं दिखेंगे, वो आपसे बड़े आलिम थे, उनको आपसे ज़्यादा दीन का इल्म था, लेकिन कोई ना कोई चीज़ ऐसी आई बीच में, चले पड़े। मसलन इब्लीस को ले लीजिए, इल्म वाला था, इबादत वाला था, लेकिन फितने से नहीं बच सका। ठीक है, तो इसमें आप दीन का फितना हमेशा रखा करें। अल्लाह मुझे एक्सट्रीम पे ना रखना, अल्लाह मुझे रुख्सतों पे ना रखना, अल्लाह मुझे दीन की बुरी मिसाल ना बनाना, अल्लाह मेरी बेअमली को दूसरों के दीन से रुकने का ज़रिया ना बनना, अल्लाह मेरे दीन की वजह से कोई मुझसे जहालत ना बरते, मुझसे जहालत से पेश ना आए। यानी जो भी अपने रब से बातें कर सके वो आप कर सकते हैं इस दुआ को पढ़ते हुए। कहीं आपको डर लगता है कोई आपको प्रेस करेगा, कोई मजबूर करेगा, मजबूर करके आपसे कोई काम करवा देगा जो कि दुरुस्त नहीं होगा, राइट? आप सब चीज़ों का एक दुआ करें कि अल्लाह मेरे दीन में आफियत दे दे। और यकीन कीजिए, अल्लाह के नबी ने सबसे पहले अगर ये बोला है ना इधर, तो फिर यही बेहतर है। ये वो दुआ है जिसके बगैर कोई बंदा रह नहीं सकता। क्योंकि देखिए, दीन का फितना भी बहुत बड़ा होता है। दुनिया के फितने दुनिया वाले, दीन के फितने दीन वाले। और इतनी बड़ी आजमाइश है दीन की। मसे एक और फितना भी होता है दीन का, कि दीन की वजह से हम पे जुल्म व सितम होने लगे। मसलन असहाबुल अखदूद, खंदकों में डाले गए, हाँ, आग की खंदकें खोदी गईं। ये छोटा सा फितना था। और दीन के फितने क्या हैं? हजरत बिलाल पत्थरों पर लिटाए गए, खाल पिघल पिघल जाती थी, दीन का फितना था। मक्का के 13 साल दीन के फितने थे। हम पे तो भी वो वक्त भी नहीं आया, और अल्लाह न करे कभी आए। हमारा ईमान बिलाल जैसे ईमान जैसा थोड़ी, क्या हद हद पुकारे, हम तो पता नहीं उस वक्त कितने समझौते करके बैठे हों। इतनी जल्दी तो हमें अपने ऊपर रहम आने लगता, इतना ज़्यादा तो हम अपने ऊपर थ्रेट महसूस करते हैं दीन के नाम पे। ज़रा कोई चीज़ दीन की एक से दो ऊपर हो जाए, हम कहते हैं हाय हाय क्या कहें, इतनी बड़ी आजमाइश। नहीं, तो दीन के फितनों से अल्लाह आपको मुझे बचाए। फिर आप देखिए, दुनिया दुनिया के फितने तो आप सारी तरफ ही देख लें। दुनिया में तो हर वो चीज़ आती है जिसको हम दुनिया और जिसको दुनूब से करीब लगाए बैठे हैं। कहा करें, अल्लाह इस दुनिया को मेरे लिए आंखों की ठंडक ना बना, बल्कि इस दुनिया को मेरे लिए आखरत का सामान जमा करने वाली बना। इस पे और दुआएं इंशाल्लाह आगे आएंगी, और इस बुक में ना आई तो आपको फिर और भी सिखाएंगे कि अल्लाह इस दुनिया को जो मुझे तूने दी है, ये मेरी आखरत का जरिया बना दे। और इसी तरह सोम, तो दुनिया के फितने और दुनिया की आजमाइशों से आफियत हम सब जानते हैं। गाड़ी मिली, एक्सीडेंट हो गया, ये फितना था। माल का फितना है, दुनिया का फितना है। तो दुनिया में हर चीज़, अपनी चीज़ों को देखा करें। अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं, मेहनत से कमाई हुई, दुनिया की कमाई, उससे घर लिया। अल्लाह घर की कोई चीज़ ख़राब ना हो, अल्लाह ताला ये ना हो वो ना हो, यानी अपनी दुनिया की नेमतों को भी सिक्योर कीजिए दुआएं मांग मांग के। अल्लाह बिजली फ्यूज़ ना हो जाए, नेट ख़राब ना हो जाए, ये सारी चीज़ें दुनिया में आती है ना आपकी। फिर आप देखिए, इसी के साथ अगर थोड़ा और एलेबोरेट करें, वाहली मेरे घर वाले, इसमें तो हर फितना, हर आजमाइश, उससे आफियत मांगते, बच्चों की खुशियाँ मांगते, शौहर के साथ ताल्लुक़ अच्छा हो, घर में कोई बुज़ुर्ग हैं तो वो हमसे खुश हों, भाई बहन मुझसे खुश हों। अब अहल में आप सभी को लगा लीजिए कि अल्लाह मेरे इंसानी मामलात अच्छे हों, मेरे रिश्तेदार मुझसे राज़ी हों, मुझे रिश्तेदारों की खुशी के लिए कहीं तुझे ना नाराज़ करना पड़े। मांगिए, आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपको ज़रूर आफियत देंगे। अगर हमें पता चल जाए ना कि हमारे अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, तो हम और भी ज़्यादा ज़रा रिलैक्स होकर फिरने लगें। तो इसमें आप इंसानी मामलात को सामने ले आते हैं। फिर उसके बाद देखिए, माली, माल के फितने। अहल के बाद अगली चीज़ हमने क्या देखी है इसमें? व माली, तो माल का फितना पहले दुनिया के फितने के साथ भी जोड़ लें तो उसमें भी आ गया और अलग से भी आ गया। क्या पता चला? देखिए, आपने सुबह ये दुआ पढ़ी होगी ना, आप मांगेंगे आप, दुआएं पढ़ने और मांगने में यही बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि हमें पता ही नहीं चलता मांग क्या रहे हैं। और कहते हैं ना कि जब दिल ना हो दुआ में तो कबूल कैसे हो। बाज़ दफ़ा तो हमारा ये हाल नहीं हो जाता कि जो मांग रहे होते हैं खुद भी नहीं पता, कहते हैं मैंने तो नहीं ऑर्डर किया। कभी आपके घर की बेल बजे और पिज़्ज़ा आ जाए, जी डिलीवरी है, आप कहते हैं मैंने तो नहीं ऑर्डर किया, बाद में पता चला वो ऊपर छोटे ने ऑर्डर कर दिया था और वो छोटी ने कर दिया था। अब तो ये भी आसान है ना कि माँ रूठती है तो रूठे। हमारी इधर उधर बड़ी माएँ हैं जो हमसे मोहब्बत करती हैं, बस अपनी माँ को कुछ देना नहीं पड़ता, उनको थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारी दुआएं जो हम मांग रहे होते हैं ना, हमें नहीं पता क्या मांग भी रहे हैं। मैं आपसे पूछूं, अभी आपके पास कौन सी नमाज हुई है? अभी मेरे पास तो असर की नमाज थी। ये असर में तहियातुल्लाही में क्या पढ़ा मैंने? ये मैंने सूरह फातिहा में क्या मांगा था? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, पता ही कोई नहीं। ये मैंने रुकू की दुआ में क्या मांगा? पता नहीं, ध्यान ही नहीं था, क्लास में तवज्जो थी, पता नहीं कितनी चीज़ों में तो पढ़े हुए थे। नहीं, मांगिए अल्लाहुम्मा अस्तर अवराती, इतनी प्यारी दुआ, अल्लाह मेरे ऐब रख ले। देखिए जो कपड़ा काम करता है ना हमारे लिए, वही आप अल्लाह से मांग रहे हैं। ऐब छुपाता है हमारे, तो 70 लफ्ज़ है, ये भी इसी से है। काबिले शर्म चीज़ जो दूसरों को बंदा दिखा ना सके। तो जब आप अल्लाह से कहते हैं अल्लाह मेरी छुपी हुई चीज़ें, औरत लफ्ज़ वही जिससे उर्दू में लफ्ज़ औरत है, औरत उन सुराख को भी कहते हैं कि अल्लाह जो मेरे ऐब हैं, मेरी कमियां हैं, उसको दूर कर दें। हमें से सब में ऐब होते हैं, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो हर ऐब से हर शर से पाक है। तो आप अपने ऐब बोलने के चलने के अल्लाह से कहा करें। बस दफ़ा हमारी बात के अंदाज़ में इतनी तेज़ी, बस दफ़ा इतनी सख्ती, बस दफ़ा इतना लोच, अल्लाह ताला मेरी कमियां दूर कर और मेरे ऐप और इसमें और बहुत सारे। बस दफ़ा कुछ हैबिट्स होती हैं, हमारी पर्सनैलिटी ऐसी है, कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। तो आप कहा करें कि अल्लाहुम्मा अस्तर अराती, अल्लाह मेरे ऐप छुपा ले, किसी को ना पता चले। अब देखिए कभी दफ़ा कोई दाग लग जाता है ना, लेकिन हम छुपा ही लेते हैं ना, ज़रा सा उसकी तह बदल दी, दुपट्टे पे कोई निशान पड़ गया, कमीज़ में कुछ आ गया, तो आप भी करते हैं ना। तो जब अल्लाह छुपाए तो क्या होगा? और कौन सी सूरत है कुरान में? गाफिर ज़म्बि काबिल तौब, अल्लाह ताला की ज़ात सत्तारुल उयूब है। जब अल्लाह छुपाता है ना अब, तो वहाँ निशान ही नहीं रहता धोने का, मलने का, रगड़ने का। अल्लाह हमारे सब के ऐब दूर कर दे, छुपा ले इस दुनिया में। जैसे कभी डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, कट लगता है, फिर कभी कभी ऐसे कट्स होते हैं, स्टिचेस होते हैं, कुछ दिन के बाद पता ही नहीं चलता कि यहाँ से काटा था। तो गोया कि आपके ऐब छुप गए, स्किन पे कुछ ऐप है, कुछ दाग हैं। आप क्या करते हैं, ऊपर कुछ ना कुछ लगा देते हैं, ये कंसीलर है, ये फाउंडेशन है, ये पाउडर है। चले दूर से सही, लोगों को आपका चेहरा चमकता हुआ दिखता ही होगा ना। तो जब अल्लाह ताला आपके मेरे ऐप छुपाएगा तो क्या होगा? वामिन रवाती, ये तो ज़रूर मांगिए, अल्लाह मेरी घबराहटों को अमन दे, हे अल्लाह मुझे पुरसकून कर दे। देखिए ज़िंदगी में हम में से हर एक को अपने लिए एक असूल बनाना है, जिस चीज़ पे आप घबराहट में चले गए ना, हाय 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 ये हो गया वो हो गया, कुछ लोगों का काम ही हर वक्त हिलाना होता है, खौफजदा करना। कुछ खवातीन हर बात पे मियाँ को फोन, ये हो गया वो हो गया, नहीं अब ठीक हो गया, बच्चा स्कूल से नहीं आया, ये करें वो करें जल्दी, नहीं अब आ गया। ये होती है घबराहट, इसको काबू में लाइए। गाड़ी चलाने वाले को आप अगर इस तरह की टोन में एकदम करें, हादसा हो जाएगा। खाना पकाते हुए किसी बंदे को आप एकदम जाके पीछे से शोर मचाएं, उसके हाथ से खाने की पतीली गिर जाएगी, तो ये घबराहट। और हमें खुद भी पता होता है बस जब हम घबरा, हाय हाय गाड़ी की लाइटें खुल गई, हाय ये हो गया, हाय गाड़ी गलत पार्क कर, इट्स ओके, वो तो पता नहीं गलत पार्क हुई है, नहीं आपने क्या कर दिया अभी, सब गड़बड़, आप भी उठी, आपकी कुर्सी भी खिली, आपकी चीज़ें भी गिरी, ये क्या बात हुई? तो आज से अपने लिए मांगिए और यकीन करिए अगर आपने बड़े काम करने हैं ना, तो हमल तहमल आसानी मांगिए कि अल्लाह तू मुझे अमन दे। देखिए मोमिन मामून होता है अमन से, आवाज़ में सुकून, चाल में कून, खाने में आराम से, बोलने में एक बात कीजिए 3 सेकंड देकर दूसरा जुमला बोलें, पहली बात अगला आपकी समझ तो ले, आपकी बात हजम ही नहीं कर रहा अगला, आप दूसरी, आप देखिए खाना खाते हैं तो लुकमे पे लुकमा डालते हैं, सबको पता है तहजीब का भी यही तकाजा है, एक लुकमा डाला हल्का सा, उसको चबाया दबाया, फिर दूसरा, लुकमे पे लुकमा को डाले, चम्मच पे चम्मच, चप चप की आवाज़ें आए, मेरा नहीं ख्याल कि आप वहाँ बैठ के खाना खा सके, तो जब हम इतनी तेज़ी से बोलते हैं। और याद रखिए, जो जितनी तेज़ी से बोलता है उसके आधे जुमले लोग खा जाते हैं, क्योंकि अभी वो वेवलेंथ ही नहीं मिली। अभी पहला हजम हुआ, वो हुआ नहीं तो दूसरा तो स्किप हो जाएगा, फिर तीसरा आया तो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां शायद याद रह जाए, दूसरा, चौथा, छठा नहीं याद रहेगा। अपने बोलने के अंदाज को कून वाला बनाइए। ज्यादा ज्यादा क्या हो गया होगा जी, जंग लग गई, हमला हो गया, तो होने दे, आप तो रिलैक्स हो, क्योंकि ये अंदाज बहुत खतरनाक होता है। मैंने देखा जिन माओ में ये चीज़ होती है ना, उनके बच्चे फिर आगे से रिएक्शन बहुत दिखाते हैं। आप उन मासूमों से बहुत ऊंची बात कर रहे हैं, इसी तरह सोहन, हर एक के अंदर बहुत चीज़ें होती हैं, तो हमें अपनी इन चीज़ों पे काबू करना है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन घबराहट पे अमन। बाज़ लोग उठ उठ के उछलते हैं, हाय हाय ये हो गया, क्या हुआ, अपने आप को कहा कर इट्स ओके, फाइन, कूल, काम। अच्छा, अक्सर बच्चों की आदत होती है भागते हुए आ रहे, मामा मामा, आप उसको क्या करें, जो कह रहे हैं तो पीछे वाले को थप्पड़ मार दें कि उसके बारे में बात की नहीं, ओके, काम, कूल, टेक अ डीप ब्रेथ, अब बोलो, इतने में बात ही भूल जानी है बच्चे को, तो ये बहुत ज़रूरी है। हमारी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा ऐब है ये, बच्चों में होता है, बड़ों में इंशाल्लाह वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। अगर आपको अपने बच्चों में भी लगता है ना, तो बहुत ज़्यादा उनको कॉन्शियस ना करें, बस डील ऐसे करें, जो बहुत ही बात सुनाने के लिए है ना, उसको ऐसे करें, ओके, वेट। ये माँ की तरबियत होती है, पता है आपको, ज़रा से उसको ठंडा करें। और कोई बच्चा बड़ा ही दबा है ना, तो एक ही दफ़ा कहते हो कि जी मेरा बेटा क्या बात है, आओ इधर हमारे पास बात करो, तो इससे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके वो बच्चे जो बहुत हाइपर हैं वो ठंडे हो जाएंगे, और जो बड़े ही दबे दुबे हैं वो थोड़े से उबर जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए कि अगली चीज़ क्या है, कि अल्लाह तो मेरी हिफाजत फरमा, मेरे सामने से, मेरे पीछे, मेरी दाएं, मेरी बाएं से, ऊपर और नीचे से, यही डायरेक्शंस है ना, छह डायरेक्शंस है, आप देख लीजिए। सामने हम देख लेते हैं, हो सकता है जो सामने से चीज़ आ रही हो उसे खुद को बचा ले, पीछे से कौन देखता है हमें, अल्लाह। दाएं बाएं, गाड़ी चलाते हुए आप इस चीज़ को ज़रा नोट कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम कभी राइट साइड से गाड़ी आके लग जाती, कभी लेफ्ट से, कोई पीछे से आकर टक्कर मार जाता है, कभी आप खड़े होते हैं कोई आके आपको पीछे से ऐसी ठोकर मार जाता है, तो मेरे मालिक तूने फरिश्ते तो लगाए ही हैं, अब तू मेरी मदद कर, तू मेरे लिए आगे पीछे से काफ़ी हो जा, और मैं तेरी अजमत की पनाह चाहता हूँ इस बात से कि नागे हाँ अपने नीचे से हलाक किया जाऊँ। ये अपने नीचे से हलाक करना क्या है, जो मेरे नीचे वाले लोग हैं, मेरे मातहत है ना, वो मुझ पे गालिब ना आ जाए। आप देखिए ये दुआ क्या खूबसूरत दुआ है, कई दिन से ख्वाहिश थी कि ये दुआ मांगूँ, और आपको भी थोड़ा सा इस पे गौर कराऊँ। खुलासा ले लीजिए, नंबर एक आफियत, अफ से निकला, इसका मतलब क्या है, मुकम्मल सेहत। इसकी मुख्तलिफ किस्में होती हैं, मसलन दीन के मामले में आफियत से मुराद क्या देखा, गुनाहों से आफियत, बिदात से बचना, इतात में काहली और सुस्ती से छुटकारा। फिर इस तरह दुनिया के मामले में आफियत से क्या मुराद है, इसके शर और मसाइब से अल्लाह की पनाह में आना। फिर इस तरह जिस्मानी मामले में आफियत से क्या मुराद है, मरस और बीमारी और गुनाहों की ज्यादती से सलामती। और माली आफियत से मुराद नित नई माली आफतें जो हमारे इर्द गिर्द मंडला रही हैं उससे बचना। चार चीज़ें आपने मांगी, हर तरह की आफियत, पर्दे की बातों पर पर्दा डाल दे, मेरे खौफ व हरास को अमन में बदल दे, और शैतान तो चारों तरफ से हमला करता है। और यही चार डायमेंशंस आप पढ़ते हैं सूरत अल अराफ में भी, इसी से मिलती जुलती बात इबलीस ने भी कही थी, उसी की तरफ भी तवज्जो ले लीजिए। गोया कि आपका मेरा रब चाहता है कि हमारी मुकम्मल हिफाजत हो, बेहतरीन तरीके से हम इन चीज़ों को ले सकें, और आप अल्लाह से मदद मांगे बगैर बच नहीं सकते ना मैं। हमें से हर एक अगर बचेगा ना किसी नुकसान से, किसी शर से, तो अल्लाह की मदद से बचेगा। अब इस शऊर के साथ मांगना चाहते हैं, बस दफा में मांगते हुए भी थकन होती है ना, अल्लाह देते देते नहीं थकता। एक और बात यह है कि जितना ज़्यादा कबूलियत का यकीन होता है ना, उतना ज़्यादा उससे मांगने को दिल करता है, तो मांगते हैं।
اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني. اللهم
देखिए कि आपने सारी डायमेंशंस को फील किया। जब इसमें डायमेंशंस आती है ना, तो उस वक़्त अल्लाह ताला के अलवासे होने को और अहाता करने वाले को जहन में रखिए। वला युहीतू नबी शय मिन इल्मिही, तो उससे इंशाल्लाह अल्लाह ताला के साथ बंदे का ताल्लुक और भी ज़्यादा बढ़ता है। इसको तो ज़रूर याद कीजिएगा और पढ़ना रूटीन बनाएं। आप एकदम महसूस करेंगे सुस्ती ख़त्म, काहली ख़त्म, डिप्रेशन ख़त्म। कई बीमारियां ऐसी हैं जो अभी तक समझ नहीं आ रही थी कि किधर से इलाज कराएं। आप इन दुआओं की बरकत से देखेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला उनको सही करेगा। और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला सब की इन बीमारियों और परेशानियों को दूर करे।